येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम कथा में यहां तक पहुंचे थे कि जब शंड और अमरक ने प्रहलाद को कई बार उपदेश देने का प्रयास किया और प्रहलाद से उस व्यक्ति का नाम निकालना चाहा जो कि वो सोचते थे कि प्रहलाद के गुरु है या प्रहलाद को जिन्होंने ये सिखाया है, वेश बदल के यहाँ आकर अंदर दैत्यों के गुरुकुल में उन्होंने प्रहलाद की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। जब उल्टा प्रहलाद ने ही उनको उपदेश देना शुरू किया और कहा कि मैं उन भगवान को नमन करता हूँ जिनके माया शक्ति द्वारा लोग मोहित होकर असत को ग्रहण करते हैं और मित्र और शत्रु में भेदभाव करते हैं। तब शंड रमर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अभी दंड देना होगा इस बालक को, और उन्होंने कहा कि ले आओ, ये हमारे एक छड़ी ले आओ ताकि हम प्रह्लाद को अच्छी तरह से दंडित कर सकें। और फिर आगे शंड और अमर क्या कह रहे हैं देखिए। जैसे हर एक व्यक्ति को अपना परिवार, अपना देह, अपने बच्चे, अपना कुल, अपना समाज सर्वश्रेष्ठ लगता है, उसी प्रकार से शंड और अमर्क दैत्य कुल के थे, दैत्यों के गुरुजन थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हमारा ही कुल जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और फिर आगे देखिए क्या कहते हैं। दैतेय चंदन वने जातो यम कंटक द्रुमः यन्मूलोन्मूल परशोर विष्णु नालायितोर भकः। वो कहते हैं दैतेय चंदन वने, ये जो दैत्य कुल है ये चंदन के वन के समान है। चंदन वन क्या होता है? जिस वन में बहुत सारे चंदन के वृक्ष होते हैं, तो चंदन वन तो वो होता है जहां बहुत सुगंध होता है, बहुत ही सुंदर स्थान होता है। तो शंड और अमर्क दैत्यों के समाज को एक चंदन वन के समान कह रहे हैं। और जातः अयम कंटक द्रुमः, और इस चंदन वन से न जाने कैसे जातः जन्म लिया है अयम इसने या प्रह्लाद ने कंटक द्रुमः। द्रुम मतलब वृक्ष, कंटक मतलब कांटे का। तो न जाने कैसे इस चंदन के वन में ये कांटे का वृक्ष आ गया। दैत्यों के सभ्य समाज में ये असभ्य प्रह्लाद कहां से आ गया? ये द्वंद्व था शंडर अमर के मन में, थोड़े बेचैन थे, भ्रमित हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है। यन मूलोन मूल परशोर विष्णु नालायितो और भकः। वास्तव में अभी हम समझ गए हैं कि किसी चंदन के पेड़ को मूल से काटने के लिए एक परशु की आवश्यकता होती है। परशु जो परशुराम धारण करते थे, एक परशु की आवश्यकता होती है। तो परशोर विष्णु हो, तो कौन है वह परशु जो कि इस दैत्य कुल, इस चंदन रूपी दैत्य कुल का नाश करना चाहते हैं? वो है विष्णु। विष्णु ही दैत्यों के शत्रु हैं। वास्तव में भगवान तो किसी के शत्रु नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः। भगवान कहते हैं मैं सबकी ओर समान दृष्टि रखता हूं, न मैं किसी से प्रेम करता हूं और न मैं किसी का शत्रु हूं, न किसी से द्वेष करता हूं। तो जब भगवान के भक्त किसी से द्वेष नहीं करते और किसी को शत्रु नहीं समझते, तो भला भगवान कैसे समझे? लेकिन दैत्यों के गुरुजन भी ऐसे मोह में हैं और वो सोच रहे हैं कि विष्णु दैत्यों के शत्रु हैं, और विष्णु ही वो परशु हैं जो कि दैत्यों के नाश के लिए हैं। अब जो परशु होता है, जो लोहे का भाग होता है, लोहे के भाग में एक हैंडल भी होता है जो लकड़ी का बना होता है। केवल लोहे के भाग से आप वृक्ष नहीं काट सकते, लकड़ी जोड़ देना पड़ता है, फिर इस लकड़ी को पकड़ के फिर आप बड़े जोर लगा के वृक्ष को काट सकते हैं। तो फिर शंड अमर कहते हैं ये परशु तो है विष्णु, लेकिन वो लकड़ी जो हैंडल है वो कौन है? प्रह्लाद है। और जो परशु का हैंडल होता है, जो लकड़ी होता है, वो विशेष करके कांटों के वृक्षों से बनाया जाता है। तो ये प्रह्लाद का जन्म हुआ है इस दैत्य कुल के नाश के लिए। ये प्रह्लाद तो विष्णु का निमित्त है, यंत्र है, विष्णु का दूत है ये। वास्तव में ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं प्रह्लाद की, लेकिन वो निंदात्मक दृष्टि से कह रहे हैं, परंतु वास्तव में प्रशंसा हो रही है क्योंकि प्रहलाद को इतना ऊंचा स्थान दे रहे हैं कि प्रहलाद विष्णु के यंत्र हैं, जो विष्णु कार्य करना चाहते हैं उसके लिए प्रहलाद को निमित्त बना रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात है ना, भगवान की ओर से निमित्त बनना बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से शंड और अमरक प्रहलाद की निंदा करना चाहते थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो कांटे के वृक्ष होते हैं वो ऐसे मरुभूमि में, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, किसी चंदनवन में नहीं पाए जाते हैं। और इसलिए हिरण्यकश्यप और उसके अनुयायियों को वो चंदनवन की तुलना कर रहे हैं। तो शंड और अमरक आगे बोले जा रहे हैं, और उन्होंने कई तरह से प्रहलाद को तर्जन आदि, मतलब धमकी दी, बहुत दंड दिया, सोचा कि किसी न किसी तरह से इस बालक को ठीक किया जाए। ये तो ऐसे है कि बिल्कुल टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा करने के लिए हमें उपाय है। लेकिन उन्होंने देखा कि जितना भी वो धमकी देते थे, जितना भी वो दंड देते थे, फिर प्रहलाद वैसे के वैसे रहते थे। प्रहलाद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर आगे नारद मुनि कहते हैं कि त्रिवर्ग में उपदेश देना शुरू किया उन्होंने प्रहलाद को। ये त्रिवर्ग क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम। वैसे चार पुरुषार्थ बताए जाते हैं मनुष्य के लिए, धर्म, अर्थ, काम और चौथा है मोक्ष। तो जिस धर्म की बात यहां पर की गई है वो भक्ति धर्म नहीं है, भागवत धर्म नहीं है, ये कर्मकांडीय धर्म है, जो भौतिक भावना से स्वीकार किया जाता है, ऐसे धर्म की बात हो रही है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ज्यादातर जो है लोग धर्म को ऐसा ही मानते हैं, अपने भौतिक प्रगति का एक वाहन मानते हैं, जिसको ज्यादा समाज में आगे बढ़ना है, भौतिक जीवन में प्रगति करनी है, जिसको ज्यादा भोग करना है, वो भी कभी कभी इस प्रकार के धर्म का आश्रय लेता है। कई देवी देवताओं के मंदिर हैं और कई लोग जाते हैं और तरह तरह की चीजें उनके इष्ट देव या देवी से मांगते हैं, और इस प्रकार से वो सोचते हैं कि यही धर्म का मतलब है, कि धर्म ही इसलिए बनाया गया है ताकि हम श्रेष्ठ भोग कर सके। परंतु धर्म का मतलब तो ये नहीं है, धर्म का मतलब है भगवान की भक्ति करना, अपना यह स्वरूप है। तो हिरण्यकश्यप इस प्रकार के भौतिक धर्म के अनुयायी थे। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हिरण्यकश्यप ये दो शब्दों से बना हुआ है, ये शब्द हिरण्य और कश्यप, मतलब सोना और मुलायम बिस्तर। तो जब धर्म का कार्य ऐसे लोग करते हैं तो किस लिए करते हैं? अर्थ के लिए, पैसे, धन कमाने के लिए। धन का उपयोग किस लिए करते हैं? काम, इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो क्योंकि हिरण्यकशिपु भौतिक जीवन के प्रतीक हैं, इसलिए उनका धर्म, तथा कथित धर्म, उनकी तपस्या आदि भी इसी प्रकार से निंदनीय है। हिरण्यकश्यप ने भी बहुत तपस्या की थी, वो भी वन में गए थे, लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन वो तपस्या वो सच्चा धर्म नहीं है, वो तो इस प्रकार का तमोगुणी धर्म है जो केवल भौतिक प्रगति के लिए अपनाया जाता है। तो अभी यहां इस श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि शंड और अमरक ने प्रहलाद को त्रिवर्ग सिखाए, धर्म, अर्थ, काम, लेकिन जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, वो नहीं सिखाया, क्योंकि असुरों को मोक्ष में कोई रुचि नहीं है, वो तो सदैव इस भौतिक जगत में रह के भोग करना चाहते हैं। तो फिर शंड और अमरक भला प्रहलाद को मोक्ष के बारे में क्यों सिखाते? उधर हिरण्यकश्यप का मतलब है सोना और बिस्तर, और इधर प्रहलाद का क्या मतलब है? प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, आह्लाद मतलब दिव्य आनंद, जो सदैव प्रसन्न रहते हैं आध्यात्मिक चेतना में, उनको प्रह्लाद कहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो प्रह्लाद मतलब प्रसन्नात्मा, जो भगवान की सेवा करने से प्रसन्न रहते हैं सदैव। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो सदैव प्रसन्न रहता है। इसलिए आप सब बहुत प्रसन्न हैं, आपके चेहरे बिल्कुल हमेशा हसमुख रहते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से भक्ति करते हैं। जो व्यक्ति भक्ति करेगा वो हमेशा हसमुख रहेगा। तो इस प्रकार से प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप में ये अंतर था। तो उन्होंने जब ये धर्म अर्थ काम आदि सब सिखलाया तो प्रह्लाद को बिल्कुल रुचि नहीं थी, और न ही वो शंड अमर्क जैसे गुरुजनों को ज्यादा मानते थे अपने हृदय से, क्योंकि वो गुरुकुल में थे, आज्ञाकारी बच्चे थे, इसलिए वो सुन लेते थे। परंतु उनको रुचि बिल्कुल नहीं थी कि ये मैं सीखूं कि इंद्र तृप्ति कैसे करें, ज्यादा धन कैसे कमाएं। आजकल दुनिया में लोग इसलिए साधुओं के पास भी जाते हैं, और ऐसे भी साधु हैं ज्यादा से ज्यादा जो विषय भोग के लिए, भौतिक प्रगति के लिए शॉर्टकट बताते हैं, छोटे से छोटा रास्ता उस तक पहुंचने के लिए। कोई तावीज दे देता है, कोई कुछ मंत्र दे देता है, कोई कुछ और विभूति दे देता है, ये ले लो, बहुत जल्दी तुम्हारे व्यापार में तुम बढ़ जाओगे, बहुत जल्दी तुम्हें अच्छे पति या पत्नी मिल जाएंगे, या तुम्हारे शत्रु का नाश होगा, बहुत जल्दी तुम मंत्री बन जाओगे। तो ये सब धर्म के नाम पे चल रहा है, इसलिए इतना भ्रम है। लेकिन भगवत भक्ति जो है वो एक निराली वस्तु है। ये जो चार पुरुषार्थ हैं, चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष, मोक्ष से भी बढ़कर है भक्ति, इसलिए भक्ति को पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, पांचवा पुरुषार्थ। वैसे वेदों में चार पुरुषार्थों का वर्णन है, परंतु आगे जब भागवत में पढ़ेंगे और अन्य शास्त्रों में भी उल्लेख आता है कि इससे बढ़कर एक पांचवा उद्देश्य है मनुष्य के लिए, जो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और वो है भगवत भक्ति। तो फिर जब शंड और अमरक ने देखा कि अब प्रह्लाद को काफी शिक्षा प्रदान की गई है धर्म अर्थ काम के बारे में, और फिर भी प्रह्लाद सुधर नहीं रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर आगे करते गए, आगे सिखाते गए सिखाते गए, फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब ऐसे लग रहा है कि प्रह्लाद ये दो चतुष्टम है इसमें काफी अभी शिक्षित हो गए हैं। ये चतुष्टयम क्या है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, साम दान भेद दंड, जो कि हर एक राजा को जान लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर प्रजा में या राज्य में कुछ गड़बड़ कर रहा है, सबसे पहले उसे सांत्वना देकर शांत करना, उसको साम कहते हैं। फिर दान, अगर उसे संतुष्ट नहीं होता तो कोई उपहार आदि देना, कोई ऊंचा पद उन्हें देना, और भेद, फिर उन दोनों के बीच में मतभेद पैदा कर देना शत्रुओं के बीच में, अंततः दंड। तो हिरण्यकश्यप के पुत्र को शंड और अमरक ने ऐसी चीजें सिखलाई जो उनको लगा कि हिरण्यकश्यप प्रसन्न होंगे, और हिरण्यकश्यप यही चाहते थे कि मेरे बच्चे को इन विषयों में शिक्षा प्रदान की जाए। तो फिर अपने मां के द्वारा अच्छी तरह से नहलाए गए प्रह्लाद, फिर माता ने अच्छे अच्छे कपड़े आभूषण आदि पहनाए, और शंड और अमरक प्रह्लाद को हिरण्यकश्यप के सामने ले आए। क्योंकि प्रह्लाद इतने सौम्य और सज्जन स्वभाव के थे, जैसे ही प्रह्लाद हिरण्यकश्यप के सामने आए तो उन्होंने क्या किया, पादयोः पतितं बालम। बालम अर्थात बालक प्रह्लाद पतितं, पादयोः हिरण्यकश्यप के चरण की, चरण कमल नहीं, जो उनके पैरों में उन्होंने दंडवत कर दिया, पूरा दंडवत, पतितम, पतितम मतलब नीचे गिर जाना। कौन से श्लोक में आप पाते हैं गीता के श्लोक में? तद्विद्धि प्रणिपातेन निपात, पतित और निपात ये एक ही धातु से आता। निपात मतलब गिर जाना, मतलब शरणागत हो जाना। तो प्रहलाद ने जाके पूरी तरह से दंडवत किया हिरण्यकश्यप को, और प्रतिनंद्य आशिष आसुर असुरः। और जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि अरे मेरा बेटा इस प्रकार से मुझे प्रणाम कर रहा है और इतना अच्छा बच्चा है, तो उनको स्फूर्ति देने के लिए, प्रहलाद को स्फूर्ति उत्साह दिलाने के लिए असुर या हिरण्यकश्यप ने आशीर्वाद दिया प्रहलाद को। हिरण्यकश्यप का आशीर्वाद भला कैसे आशीर्वाद, किसे चाहिए ऐसा आशीर्वाद? लोग तो देते हैं ऐसे आशीर्वाद, लेकिन ऐसे आशीर्वाद से क्या मतलब? किस प्रकार के आशीर्वाद हमें चाहिए? हमें आशीर्वाद चाहिए कि हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ें। तो हिरण्यकश्यप ने खैर आशीर्वाद दिया, और फिर बहुत लंबे समय तक परिष्वज्य चिरम दोर्भ्याम, चिरम मतलब लंबे समय तक, दोर्भ्याम अपने बाहों से परिष्वज्य मतलब आलिंगन किया प्रहलाद को लंबे समय तक। पुत्र स्नेह बहुत बढ़ गया हिरण्यकश्यप के हृदय में। अभी हमें आश्चर्य होगा, आगे भी वर्णन आता है हिरण्यकश्यप के पुत्र स्नेह का। थे इतने बड़े असुर, लाखों की हत्या की थी बड़े क्रूर ढंग से, लेकिन जब अपना पुत्र का सवाल आता है तो इतना स्नेह था। परमाम आप निर्वृतिम, और ऐसे अपने पुत्र को आलिंगन करके परम आनंद की अनुभूति की हिरण्यकश्यप ने। और आगे आइए सुनते हैं हिरण्यकश्यप का पुत्र स्नेह कैसा था। आरोप्यंकम, आरोप्य अंकम, उनको पहले उठाया गोदी में बिठा दिया। अवघ्राह्य मूर्धनी, सूंघने लगे बच्चे का सर। वैदिक सभ्यता में जब किसी बच्चे को प्रेम दिखाना होता है तो गोदी में बिठाकर उसका सर सूंघते हैं। जैसे भागवत में वर्णन आता है कि नंद महाराज भी कृष्ण को कभी कभी ऐसे गोदी में बिठाकर उनका सर सूंघते थे। अश्रु कललाम्बु भी, हिरण्यकश्यप के आंखों से अश्रु धारा बहने लगी प्रेम की। बहुत रोने लगे पुत्र स्नेह से, और इतना इतने आंसू बह रहे थे कि क्या हो गया, असिंचन विकसत वक्त्रम, और ये सारे प्रहलाद के हसमुख चेहरे को गीले कर दिए। इतना इतना बह रहे, इतना आंसू बह रहे थे। इदम आह युधिष्ठिरः, तो देखिए हिरण्यकश्यप का स्नेह, पारिवारिक स्नेह जो होता है, आसक्ति जो होती है वो बहुत तीव्र होती है, परंतु पारिवारिक स्नेह भी इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आधारित होता है, सूक्ष्म या स्थूल। हिरण्यकश्यप जाके किसी भी बच्चे को ऐसे आलिंगन नहीं करते, क्यों? ये बच्चा विशेष क्यों था? इसलिए नहीं कि ये विष्णु भक्त श्रेष्ठ विष्णु भक्त है, इसलिए विशेष नहीं था हिरण्यकश्यप की दृष्टि से। हिरण्यकश्यप की दृष्टि से ये बच्चा विशेष था क्योंकि वो स्वतः उसका खुद का बच्चा था, इसलिए स्नेह भरे शब्दों से फिर प्रहलाद को कहने लगे। हिरण्यकश्यप उवाच, फिर हिरण्यकश्यप बोले कि हे प्रहलाद, स्वधीतम किंचित उत्तमम, तुमने जो सुना है उच्चताम तात, कि बताओ मुझे कि तुमने सबसे अच्छी चीज क्या सीखी है। स्वधीतम किंचित उत्तमम, उत्तम जो तुमने बात सुनी है अपने गुरुजनों से तो वो तुम सुनाओ, क्योंकि काफी लंबे समय से तक तुम गुरुकुल में रहे हो। अशिक्षित गुरोर भवान, जो तुमने गुरुजनों से सीखा है वो मुझे बताना। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि प्रहलाद के दो प्रकार के गुरु थे। एक प्रकार के गुरु थे जो वास्तविक सच्चे गुरु, जैसे नारद मुनि। नारद मुनि तो सही परंपरा में आते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र और शिष्य हैं, और वो तो केवल भागवत धर्म या भक्ति का प्रचार करते हैं। ये सच्चे गुरु हैं। ऐसे गुरु का आश्रय हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए अगर वो अपना मनुष्य जीवन सफल करना चाहता है तो। दूसरे प्रकार के गुरु हैं वो कुल गुरु, षंड और अमरक जैसे और शुक्राचार्य जैसे, जो केवल अपने तथाकथित शिष्यों को धर्म अर्थ काम के पथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं और जानते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। प्रहलाद दोनों के बीच में अंतर भली भांति समझ रहे थे, इसलिए जो भी प्रहलाद सोच रहे थे, जो भी प्रहलाद बोलने वाले थे, वो उन्होंने प्रामाणिक गुरु से सीखे जो ज्ञान, वही बोलने वाले थे। प्रहलाद के मन में कोई विचार नहीं था कि इन भौतिकवादी कुल गुरुओं से कुछ सीखकर मैं कुछ बताऊं। अब ये देखिए, ये हिरण्यकश्यप के सामने आए दूसरी बार। दूसरी बार आके जब प्रहलाद को ऐसे हिरण्यकश्यप ने कहा तो प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो यहां पर बोर्ड पे है। आइए इस श्लोक का पाठ हम करते हैं। शायद आप में से कई भक्तों को ये श्लोक कंठस्थ है। कितने भक्तों को ये श्लोक कंठस्थ है, हाथ ऊपर कीजिएगा। तो जिनके हाथ ऊपर नहीं उठे, आज के बाद ये कंठस्थ हो जाएंगे, तो प्रयास कीजिए। प्रहलाद के उपदेश को आप अच्छी तरह से सुन लेंगे और पाठ करेंगे तो भगवान नरसिंह देव की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णोः भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। बोलिए, प्रसिद्ध श्लोक है। सबसे पहले प्रहलाद कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने सीखी है और जिसको कि मैं मानता हूं कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है, उस ज्ञान को मैं बता रहा हूं हे पिताजी। तन मन्ये अधीतम उत्तमम, मैं मानता हूं कि ये उत्तम अध्ययन है, उत्तम ज्ञान है। और वो क्या है, इति पुंस अर्पित विष्णु, जो जो भगवान को अर्पण किए जाते हैं। भक्तिश्चेन नव लक्षणा, ये नौ लक्षण, ये नौ चीजें जो भगवान को अर्पण किए जाते हैं। क्रियेत भगवती अद्धा, जो साक्षात डायरेक्ट भगवान को अर्पण किए जाते हैं। और ये जो नौ पद्धतियां हैं, ये भक्ति के सर्वश्रेष्ठ अंग हैं। और ये कौन से हैं, आपने देखा पहले श्रवणम कीर्तनम आदि। तो प्रभुपाद जी बहुत ही लंबा तात्पर्य लिखते हैं इसके लिए, इतना लंबा है, कई पन्नों से है, इसलिए ये एक अलग ही विषय होगा, कभी और इसकी चर्चा की जा सकती है। परंतु बिल्कुल संक्षेप में बताया जाए तो प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अन्य आचार्यों की टीकाओं से समझाते हैं कि जो कर्मकांडी लोग होते हैं वो भी अपना कर्मकांड समाप्त करने के पश्चात अपने कर्मों का फल भगवान विष्णु या कृष्ण को अर्पण करते हैं। कर्मकांड के समाप्ति में भी ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है, कृष्ण कर्मार्पणमस्तु या विष्णु कर्मार्पणमस्तु। परंतु उनका जो भगवान विष्णु के चरण कमलों में कर्म अर्पण करने की पद्धति है या भावना है, वो भक्तों की भावना से अलग है। तरह तरह के ऐसे कार्य होते, नहीं ले जाना। श्रवणम कीर्तनम अभी है ना, चर्चा करना है। हाँ, श्रवण कीर्तनम का भाग लगाइए। हाँ ठीक है। तो उसको न्यास कहते हैं, जब ऐसे हम कुछ अर्पण करते हैं जैसे न्यास होम है वैसे। तो कर्मकांडी लोग क्या करते हैं कि वो पहले कोई कार्य करते हैं अपने मन के अनुसार, कोई पुण्य कार्य, और जब वो कार्य अपनी इच्छा से करते हैं फिर उन कार्यों के फल जो है विष्णु के चरण कमलों में अर्पण करते हैं। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त के भाव ये न्यास नहीं होता, संन्यास होता है। तो न्यास और संन्यास में क्या अंतर है? और विशेष करके वैष्णव संप्रदायों में सन्यासी जो होते हैं वो त्रिदंड को धारण करते हैं। त्रिदंड, एक दंडे में तीन दंडे होते हैं। तो वो किस चीज के प्रतीक हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं काय मनो वाक्य, कि अपने शरीर से, अपने मन से और अपने वाणी से वो भगवान की सेवा करते हैं, समर्पित हैं पूरी तरह से। तो भक्त जो होता है उसका जीवन पूरी तरह से केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही होता है, और कोई उद्देश्य नहीं होता। वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत होता है, और ऐसे शरणागत होकर जब वो कोई अपने शरीर से कार्य करता है, अपने कुछ वचन बोलता है, अपने मुख से या मन में कोई विचार करता है और इनको अर्पण करता है, तो ये साक्षात अर्पण किए जाते हैं। भगवती अद्धा क्रियेत भगवती अद्धा। तो जब भगवान के भक्त भगवान को कर्मों के फल अर्पण करते हैं तो वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि वो पहले से ही शरणागत है। तो जो भी भक्त करता है वो कृष्ण के लिए होता है, तो खुद ब खुद वो अर्पण हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि भक्त जो भी कुछ करता है वो कृष्ण के लिए है इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उस स्तर में नहीं है। हमें बहुत सावधानी से, विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए, भेद करना चाहिए कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या नहीं है। और फिर प्रहलाद बताते हैं हिरण्यकश्यप को कि भक्तिश्चेन नव लक्षणाय, जो नौ लक्षण है भक्ति के वो कौन से हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये क्रम से बताए गए हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रवणम, विष्णु के बारे में, किसी और के बारे में नहीं। भक्ति वो चीज है जो केवल भगवान विष्णु के बारे में की जाती है, उसे भक्ति कहते हैं। और केवल हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, और ऐसे भावना से जब भक्त श्रवण कीर्तन करते हैं तो इसे वास्तविक भक्ति कहते हैं, जो बिना की अभिलाषा के, भौतिक अभिलाषा के हो। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो इसे उत्तम भक्ति कहते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में भी बताया गया है कि भक्ति का मतलब है केवल भगवान की सेवा करना और किसी के नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज यहीं पे स्पष्टीकरण कर देते हैं पहले से, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, और किसी का नाम नहीं लेते, पहले ही बोल डालते हैं, देखो हम केवल विष्णु की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं, किसी देवी की नहीं, किसी देवता की नहीं। तो जब हम भक्तों के संग में आके श्रवण करना शुरू करते हैं तो फिर स्वाभाविक है कि हम कीर्तन कर सकते हैं, और आगे चल के जो हम श्रवण कीर्तन करते हैं उसका स्मरण भी करते हैं, और इस प्रकार से यह नवविधा भक्ति चलती है। थोड़ा घुमा लेंगे। हाँ, श्रवणम कीर्तन ठीक है। स्मरणम के बाद है पाद सेवनम। पाद सेवनम का अर्थ क्या है, कोई बताएंगे? भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, सही है? लेकिन कैसे भगवान के चरण कमलों की सेवा कर सकते हैं, प्रैक्टिकल दृष्टि से बताइए। लक्ष्मी देवी तो करती हैं पाद सेवनम, हम लोग कैसे कर सकते हैं? हाँ, अपने पैरों का इस्तेमाल करना मंदिर में आने के लिए, बहुत अच्छी बात। वास्तव में पाद सेवनम का मूल अर्थ है भगवान के चरण कमलों का तीव्रता से स्मरण करना। ये मानसिक दृष्टि से हुई बात, लेकिन अपने शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान के धामों में, तीर्थ स्थानों में जाना, ये भी पाद सेवनम में आता है। मंदिर में आना, क्योंकि ये भी तो भगवान का धाम है। तो जब आप घर से आते हैं तो वो भी पाद सेवनम है। हाँ, कभी स्कूटर मोटरसाइकिल और गाड़ी में भी आते हैं, लेकिन थोड़ा फायदा तो मिलता ही है। फिर भी पैरों का प्रयोग तो हो ही रहा है ना, कम से कम थोड़ा तो कुछ हो रहा है। और आ रहे हैं, कष्ट ले रहे हैं हम आने के लिए, भले गाड़ी से आए, साइकिल से आए, पैदल आए, कैसे भी आए, हम आ रहे हैं। तो इसे भी पाद सेवनम कहते हैं। और भी आश्चर्यजनक बातें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि न केवल तीर्थ स्थानों में जाना ये पाद सेवनम में आता है, गंगा में स्नान करना, यमुना में स्नान करना, भक्तों की सेवा करना, ये भी पाद सेवनम में आता है। पाद सेवनम में तदीय सेवनम भी आ जाता है। तदीय मतलब जो भगवान से संबंधित है वो, ये भी भक्ति का अंग है। अगर हम पूछेंगे कि वैष्णवों की सेवा करना तो भक्ति का इतना महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन श्रवणम कीर्तनम में कहाँ है, तो ये पाद सेवनम में है। भगवान के भक्त भी हमेशा भगवान के चरण कमलों में स्थित होते हैं, तो भगवान से संबंधित हैं ये। तुलसी की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, गंगा जमुना की सेवा करना, उनमें स्नान करना, गौओं की सेवा करना, क्योंकि ये भी तदीय है, गो सेवा भी तदीय है, इसलिए पाद सेवनम में आता है। इस प्रकार से हम जब अलग अलग अंगों को अपनाते हैं बहुत शीघ्र ही प्रगति करते हैं। अर्चनम, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना, न केवल श्रृंगार आरती पूजा भोग आदि, परंतु जब हम मंदिर में आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, ये भी तो एक अर्चना की सेवा है। हम देख रहे हैं कि हम जो मंदिर के भक्त हैं और जो बाहर से भक्त भी आते हैं, गृहस्थ भक्त हों, ब्रह्मचारी भक्त हों, कितने सुंदर ढंग से विग्रहों की विग्रहों का श्रृंगार करते हैं। कल राधा गोकुलानंद आसन पे बैठे हुए थे, रोज खड़े होते हैं, लेकिन कल आराम से उनके सिंहासन पर विराजे थे, बैठे हुए थे। तो बहुत सुंदर सुंदर ढंग से अभी चंदन यात्रा भी चल रहा है, तो चंदन को रंगीन बनाते हैं अलग अलग धातुओं से, और फिर लेप लगाते हैं भगवान के दिव्य शरीर पर, और ऐसे ठाकुर जी को और भी अच्छी तरह से सजाकर सुंदर बनाते हैं। तो ये सब अर्चना की विधि है। तो जो भक्त इस प्रकार से सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, आप सबको बहुत धन्यवाद है कि न केवल आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु ऐसे सुंदर श्रृंगार से अनेकानेक भक्तों का लाभ होता है। वो आके ऐसे सुंदर दर्शन करते तो उनको भी कितना प्रोत्साहन मिलता है, कितनी स्फूर्ति मिलती है भक्ति के लिए। और आगे वंदनम, वंदनम मतलब क्या है बताइए? वंदनम मतलब भगवान के प्रति प्रार्थना करना। अब इसमें ये भी तो हमारे लिए खुला है, हम जब अर्चा विग्रह के सामने आते हैं तो हमें भी भगवान के सामने कोई प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन किस प्रकार की प्रार्थना? ऐसे नहीं कि हमें कोई भौतिक जीवन प्रगति चाहिए, भक्ति मार्ग के अंदर प्रगति करने के लिए ऐसे हमें वंदना करना चाहिए। और उसके बाद है दास्यम, भगवान को अपना प्रभु मानना, और हमें अपने आप को भगवान का दास मानकर उनकी सेवा करना। साथ साथ सख्यम, सख्यम ये क्या है बताइए? भगवान को अपना मित्र मानना मतलब क्या? हमें कौन सा कार्य करना चाहिए सख्य रूप में? ऐसे जब सख्य रूप से हम सेवा करना चाहते हैं भगवान की, तो हमें क्या कार्य करना चाहिए? एक शब्द केवल इसका उत्तर है। अब दास्य रूप में हम सेवा कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, पाद सेवनम कर सकते हैं, तो अगर हम सख्यम सख्य रूप से हम सेवा करना चाहते हैं, वैसे तो एक दृष्टि से देखा जाए जो अर्जुन की तरह हम सखा नहीं है, फिर भी अगर सख्य अंग से सेवा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? एक शब्द, प्रचार। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सख्यम का मतलब है कि भक्त अपने आप को भगवान का शुभ चिंतक मानता है और सोचता है कि मुझे मदद करनी चाहिए, मेरे मित्र को उसके उनके आंदोलन में मुझे सहायता देनी चाहिए, मुझे भी जाके प्रचार करना चाहिए, कृष्ण के संदेश को पहुंचाना चाहिए। तो यह भी एक अंग हो गया भक्ति का, साथ साथ श्रवणम कीर्तनम तो प्रचार में आता ही है, और अंततः आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ अपना सर्वस्व अर्पण कर देना भगवान के चरण कमलों में। और अधिक गहराई में और कभी जाएंगे इस नवधा भक्ति के मार्ग को। तो जब प्रहलाद ने ऐसे कहा तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि हिरण्यकश्यप के चेहरे पे क्या हुआ होगा, मन में क्या बीता होगा। हिरण्यकश्यप प्रसन्न नहीं हुए इस बात को सुनकर, बड़े क्रोधित हो गए। इतना क्रोध आया उनको कि इनके ओंठ जो है वो कांपने लगे, और फिर से बड़ी बड़ी आंखों से वो शंड और अमर की ओर देखने लगे। ब्रह्म बंधो किम एतत्ते, पहले तो इनको ब्राह्मण करके बोलते थे, अभी ब्रह्म बंधु कहते हैं उनको। ब्रह्म बंधु और ब्रह्म में क्या अंतर है? जो अयोग्य ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है परंतु ब्राह्मण के गुण उसमें नहीं है, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं या द्विज बंधु कहते हैं। तो पहले तो ब्राह्मण कह के बोलते थे, लेकिन आज शंड और अमर को बोल रहे हैं ब्रह्म बंधु। किम एतत्ते, ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या किया आप सबने? विपक्षम श्रयत असता, विपक्ष के जो सिद्धांत है उसका आश्रय लेकर आपने ये दुष्ट बातें जो है, ये बुरी बातें मेरे बच्चे को समझाई। असारम ग्राहितो बालो, आपने मेरे बालक को, बालो ग्राहम, ऐसी चीजें सिखाई जो कि असारम है, जो कि बिल्कुल बकवास है, जो झूठ है। माम अनादृत्य दुर्मते, इसलिए हे दुर्मति आपने मेरा बहुत ही अनादर किया है, क्योंकि मेरे शत्रु के सिद्धांतों को मेरे ही बच्चे को सिखाया है। और वो शब्द असारम कहते हैं, बकवास। तो असारम मतलब जो सार नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तव में भक्ति ही सब चीजों का सार है। श्रीमद् भागवत ये है सारम सारम समुद्रताम, ऐसे बताया गया है भागवत के बारे में कि दुनिया का सार का सार है, ये सारे ज्ञान का सार है। और जो लोग भक्त होते हैं उनको सार ग्राही कहते हैं, क्योंकि वो दुनिया की परीक्षा करते हैं। दुनिया की परीक्षा करने के बाद वो केवल दुनिया का सार लेते हैं। दुनिया का सार क्या है बताइए? दुनिया चलती कैसे है, कौन चलाता है? तो कृष्ण ही सार है ना, हर चीज के सार कृष्ण है, एसेंस। हमारे हृदय में जैसे, हमारे शरीर में जैसे आत्मा है जिसकी वजह से शरीर चलता है, उसी प्रकार से सारे ब्रह्मांड के आत्मा है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु हर एक अणु में भी उपस्थित हैं। तो भगवान ही सारे सृष्टि के सार हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन बाहरी रूपों को, बाहरी नामों को न देखकर सीधे सार को ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्तियों को परमहंस कहते हैं। हंस की विशेषता ये होती है कि वो दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध को ग्रहण करता है, पानी को त्याग देता है। इसलिए जो परमहंस होते हैं वो वैसे साधु होते हैं जो इस संसार से केवल कृष्ण को निकालते हैं, केवल कृष्ण को देखते हैं और जो कृष्ण की सेवा के लिए जो पदार्थ उपयोगी हैं उनको ही इस्तेमाल करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। ये है सारग्राही, क्योंकि भक्ति ही सारे सृष्टि का सार है, सारे शास्त्रों का सार है, सारे ज्ञान का सार है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान का भी सार है, मतलब बहुत जन्मों के बाद जब व्यक्ति ज्ञान अर्जन कर लेता है अंततः इस निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि भक्ति ही सब कुछ है, वासुदेव या कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वम इति। तो बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी जो रूप और नाम है उनसे भ्रमित नहीं होता, उनसे प्रभावित नहीं होता, उलझ जाता नहीं है उन चीजों में। कई ऐसे हैं जो हंस की तरह नहीं है, दूध और पानी के मिश्रण से केवल पानी निकालते हैं, दूध को त्यागते हैं। तो उसी प्रकार से संसार में जो भौतिकवादी लोग हैं वो कृष्ण के सिवाय सब कुछ लेते हैं इस दुनिया से, तो वो सारग्राही नहीं है, वो असारग्राही है। परंतु हिरण्यकश्यप असारग्राही है और वो सोच रहा है कि प्रहलाद जो है ये ऐसे असार ग्राही है। वास्तव में प्रहलाद तो सार ग्राही है। और भगवान को क्या कहते हैं? भावग्राही। भगवान भक्त को, भक्त के भाव को देखते हैं। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप खुद असार को ग्रहण करने की वजह से समझ नहीं पाए थे कि प्रहलाद कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। जो प्रहलाद ने कहा है वो वास्तव में सारे ज्ञान का सार है। अधीतम उत्तमम, सही कहा प्रहलाद ने कि सारे ज्ञान का ये उत्तम ज्ञान है, सार है। तो भक्ति ही सब कुछ है। हिरण्यकश्यप ने नहीं माना इस बात को। आगे चल के हिरण्यकश्यप कहते हैं, जिस प्रकार से थोड़े समय में तरह तरह के रोग शरीर में प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार से ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जो पहले तो अपने आप को मित्र कहलाते हैं हमारे, लेकिन धीरे धीरे से पता चलता है कि उनसे आचरण से कि वास्तव में ये हमारे शत्रु हैं, मित्र नहीं हैं। तो वो कहना चाह रहे थे हिरण्यकश्यप कि शंड और अमरक, पहले तो आप मेरे मित्र की तरह आए थे, मेरे सेवक की तरह आए, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि आप मेरे शत्रु हैं। उस समय शंड और अमर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने तो हृदय से पूरा प्रयास किया था प्रहलाद को प्रथम श्रेणी का असुर बनाने के लिए। उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, उनका प्रयास तो पूर्ण था, परंतु दोष उनका नहीं था कि प्रहलाद असुर नहीं बने। तो फिर शंड अमर का कहने लगे, नियच्छमन्युम कत अदाहस्म मानः, आपको ऐसे क्रोधित हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए और ऐसे झूठे आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाने चाहिए। आपका बच्चा प्रहलाद ये जो भक्ति की बात करता है, ये भक्ति न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने उसे सिखाया है न किसी और ने सिखाया है इसको। तो फिर कहां से उसको पता चला? नैसर्गिकी याम मतिर अस्य राजन, इसकी रति जो है, आकर्षण, इसकी मति, इसकी आसक्ति जो भगवान विष्णु के प्रति है वो नैसर्गिकी है, अर्थात स्वाभाविक है। प्रहलाद पहले भी शंड और अमर को कह चुके हैं कि मैं तो स्वतंत्र नहीं हूं, निस्सहाय होकर मैं आकृष्ट होता हूं भगवान विष्णु के प्रति, जिस प्रकार से लोहा लोहा चुंबक के प्रति आकर्षक होता है। तो यहां पर शंड और अमरक ने सही विश्लेषण करके बताया हिरण्यकश्यप को कि मैंने नहीं सिखाया, मेरे भाई ने नहीं सिखाया और किसी और ने भी नहीं सिखाया, ये तो इसके हृदय में पहले से ही है, ये तो स्वाभाविक भक्त है, नेचुरल डिवोटी है ये। हम देखते हैं कि गर्भाधान संस्कार आदि और भक्ति का जीवन नहीं बिताने की वजह से आजकल लोग बॉर्न डिवोटी नहीं, बॉर्न असुर होते हैं, है ना। नैसर्गिक की दुर्मति, स्वाभाविक रूप से दुर्मति आ जाती है। जैसे शिशुपाल का था, बचपन से ही कृष्ण को अपशब्द बोलते बोलते उसका जीवन काट दिया उसने। अंततः कृष्ण उद्धार तो कर दिया। तो यहां पर शंड और अमरक जान चुके हैं कि प्रहलाद कोई साधारण बालक नहीं है और न ही उसकी भक्ति जो है यह साधारण है। और इस प्रकार से जब शंड और अमरक ने कहा तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अच्छा, तो ये शंड और अमर की गलती नहीं है, तो अपने पुत्र प्रहलाद की ओर घूमे। न चेत गुरु मुखियांते कुतो अभद्र असती मति ही। अगर तुमने तुम्हारे गुरुजनों से ये नहीं सीखा है तो कुतः कहां से ये अभद्र असती चीजें तुम्हारे मन में आ गई हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति अभद्र और असती नहीं है, वो भद्र और सती है। पर हिरण्यकश्यप ये पूछना चाहते हैं प्रहलाद से, ये अभद्र असती चीजें कहां से आई तुम्हारे मन में। और फिर हाँ, दूसरा बोर्ड लाएंगे। फिर प्रहलाद ने अपने पिता को पुनः उपदेश देना शुरू कर दिया। देखिए, भक्त के गुण ये होते हैं, अनेक गुण होते हैं, उनमें से एक गुण ये है कि भक्त हमेशा निडर रहता है, वो डरता नहीं है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के सामने आंखों में आंख मिलाकर सीधा बातचीत कर रहे थे। बड़े बड़े देवता, यहां तक इंद्र भी आंखों में आंख मिलाकर हिरण्यकश्यप से बात नहीं करते थे। और जैसा आगे चल के शंड अमरक हिरण्यकश्यप को समझाएंगे कि हिरण्यकश्यप के भ्रुव केवल ऊपर होने से सारे देवतागण भी कांपते थे, तो ऐसे हिरण्यकश्यप के सामने प्रहलाद ऐसी चीजें कहने के लिए बिल्कुल हिचकिचाई नहीं, जो कि प्रहलाद जानते थे कि हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगेगा और हिरण्यकश्यप क्रोधित होने वाले हैं और शायद दंडित भी करने वाले हैं प्रहलाद को। फिर भी प्रहलाद हिचकिचाए नहीं। देखिए उनकी निष्ठा, उनकी निर्भयता, भक्त में ये स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं, ये सारे अच्छे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। केवल उस व्यक्ति के अंदर भय होता है जो अपने आप को शरीर समझता है, जो अपने आप को आत्मा रूप जान लेता है, फिर वो कभी डरता नहीं है, निडर हो जाता है। फिर प्रहलाद का उपदेश क्या था हम सुनते हैं, लिख रहे हैं अभी। अच्छा, तो प्रहलाद महाराज के अंदर जो भी गुण आए वो इसलिए आए कि वो भक्त थे। भक्ति सारे दिव्य गुणों का मूल कारण है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः। जितने भी सुर हैं उनके अंदर भी जितने अच्छे गुण हैं और सारे सारे के सारे अच्छे गुण वो केवल भक्ति करने मात्र से आ जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति भक्त नहीं है, हराब अभक्तस्य कुतो महत गुणा, उसके अंदर भला कैसे कोई अच्छे गुण आ सकते हैं। हिरण्यकश्यप भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत योग्य थे, बहुत शक्तिशाली और हर दृष्टि से युद्ध में बड़े बलवान, लेकिन भगवान के भक्ति से विरुद्ध होने के कारण उनके अंदर अच्छे गुण तो कोई नहीं थे। केवल बल बुद्धि आदि होने से क्या लाभ है जब तक कि इनका प्रयोग भगवान की सेवा में नहीं किया जाता। ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी वस्तु है या कोई भी ऐसे गुण हैं जिनकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं, और अगर इन चीजों को, इन गुणों को हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं तो वो शून्य के बराबर है, बल्कि वो हमारे हानि का कारण बन जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई आदमी डूबता है तो अपने शरीर के वजन से डूब जाता है, नीचे पानी में चला जाता है। परंतु वही व्यक्ति अगर उसके सर के ऊपर सोने का मुकुट है तो और भी जल्दी डूब जाएगा, क्योंकि सोने के मुकुट का वजन भी तो है। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, बुद्धि है, बल है, यश है आदि, और अच्छे अच्छे गुण भी है, बहुत विद्वान है, उसकी स्मृति शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है, तो यही जो तथाकथित अच्छे गुण, यही सारी संपत्ति उसके नाश का कारण बन जाएगा, क्योंकि वो इन चीजों को दुरुपयोग करेगा, विषय भोग में लग जाएगा, घमंडी हो जाएगा। इसलिए हमें ये सब संसार की वस्तुओं की के ऊपर प्रभुत्व जमाने की कोई इच्छा नहीं है। नहीं हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें बहुत अच्छी भौतिक बुद्धि दीजिए, बहुत अच्छा सौंदर्य दीजिए, हमें बहुत बलवान बनाइए, हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं। हम प्रार्थना केवल ये करते हैं कि भगवान हमें आप भक्त बना दीजिए। और भक्त बनने से, भक्त होना ये वो रामबाण उपाय है जिससे कि अन्य सारी चीजें हो सकती हैं। केवल मूल समाधान ये है कि हमें भगवान का भक्त बनना है। तरह तरह के समस्या लेकर लोग आते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये समस्या है, तो सारे समस्याओं का समाधान यहां पर है। केवल भक्ति के अंगों को हमें ठीक तरह से निभाना है, बस। इसको कोई बढ़ी चढ़ी हुई बात मत समझिए कि हम कह रहे हैं कि भक्ति करने मात्र से सारी समस्याओं का समाधान होता है, ऐसा नहीं है, ये सच है। और कोई दूसरा उपाय जीवन में नहीं है, परंतु दुर्भाग्य से बहुत कम लोग हैं जो इस बात में विश्वास करते हैं, और अगर कोई उनको भक्ति के बारे में बताने भी जाए तो समझते नहीं है। तो प्रहलाद ऐसा आरोप, सच्चा आरोप अपने पिता पर लगा रहे हैं अभी इस श्लोक में कि हे पिता, आप मुझे भक्ति की बात, आप मैं जब भक्ति की बात करता हूं तो आप कह रहे हैं ये असार है, असती है, अभद्र है आदि। आप कभी भक्ति के बारे में समझेंगे नहीं, क्योंकि आप तो असुर हैं, इसलिए आप कभी नहीं समझोगे। लेकिन ऐसे वो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, वो ऐसे साधारण भाषा में दूसरों की बात करके कहते हैं। ये श्लोक भी बड़ा प्रसिद्ध है, तो आइए इस श्लोक का पाठ हम करते हैं। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रताणाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद महाराज ने कहा, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नरकगामी होते हैं और चबाए हुए को ही बारंबार चबाते हैं। ऐसे लोगों का झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से, न अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों को मिलाकर कृष्ण के प्रति कभी होती है। तो प्रहलाद महाराज अब ऐसे लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो कभी भी भक्त नहीं बनेंगे। वैसे उनका इशारा अपने पिता की ओर है, लेकिन ऐसे सर्वसाधारण बात कह रहे हैं सबके लिए। और एक ये सिद्धांत उन सब के लिए है जो हिरण्यकश्यप की तरह हैं। वो कहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी कृष्ण मति कभी नहीं हो सकती है, मतिर न कृष्णे परतः स्वतोवा, दूसर परतः मतलब दूसरों के उपदेश से, स्वतः वा या निजी प्रयास से, मिथः या दोनों से, अपने प्रयास से भी और दूसरों के उपदेश से भी, चाहे जो भी प्रयास खुद भी करे दूसरे भी करें, फिर भी उसकी कृष्णमति जागृत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो गृह वृतानाम है, गृह का व्रत लिया है, व्रत लिया है कि हम इंद्र तृप्ति करके ही रहेंगे। हम कभी इंद्र तृप्ति को छोड़ेंगे नहीं, व्रत लेते हैं कि यही सबसे ऊंचा सिद्धांत है, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं, प्राण जाए पर इंद्र तृप्ति न जाए, अंतिम दम तक हम इंद्र तृप्ति करेंगे। तो ये जिद, इस प्रकार का जिद जो धारण करके रखते हैं कि हमें संसार का भोग करना ही करना है, किसी भी अवस्था में करना है, और जितना भी ठोकर खाते हैं जीवन में फिर भी सुधरते नहीं है। प्रभुपाद जी वो कहानी बताया करते थे, आपने भी सुना होगा कई बार, कि दो लोग थे जिनके बीच में कोई मतभेद हो गया। एक कहता था सही उत्तर है चाकू, दूसरा कहता था सही उत्तर है कैंची। चाकू कैंची, चाकू कैंची, दोनों के बीच में काफी चला, फिर यहां तक आ गए कि मुक्का प्रहार पे आ गए, पहुंच गए दोनों। फिर आखिर जो चाकू कहने वाला व्यक्ति था उसने कैंची कहने वाले व्यक्ति को उठाया और नदी में फेंक दिया। अब बेचारे कैंची कहने वाले व्यक्ति को तैरना नहीं आता था, तो वो डूबे जा रहा था, लेकिन डूबते डूबते बेचारा पानी पीते जा रहा है, डूबते जा रहा है, लेकिन डूबते डूबते जब उसका सारा शरीर अंदर गया, सर भी अंदर गया, केवल हाथ ऊपर किए उसने और केवल हाथ दिखाई पड़ रहे थे, और ऐसे कह रहा था मतलब क्या, कैंची कैंची मैं मर जाऊंगा लेकिन कैंची ही सही उत्तर है। तो ये है गृह व्रतानाम, व्रत लेते हैं, जिद लेते हैं कि हमको इंद्र तृप्ति करना ही है, भले ही कितने भी हमें ठोकर खाने पड़े। तरह तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक श्रेणी का आदमी वो होता है, प्रथम श्रेणी का, जो सुनने मात्र से जान लेता है कि चोरी करना बुरा है, तुरंत कभी भी चोरी नहीं करेगा। दूसरा है श्रेणी का व्यक्ति जो कहेगा कि ठीक है लेकिन मुझे देखना तो दो, दूसरे को दंड मिलते हुए, तब मैं समझ जाऊंगा कि चोरी करना बुरा है। तो वो देखता है कोई चोर पकड़ा गया, उसकी पिटाई की गई है, फिर वो सुधर जाता है, नहीं मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। तीसरा व्यक्ति, तीसरे श्रेणी का व्यक्ति वो है जो किसी को चोरी करते हुए पकड़े जाके उसे पिटाई होना देख लेता है, लेकिन सोचता है जब तक मेरी पिटाई नहीं होगी मैं समझूंगा नहीं। फिर वो चोरी करता है, उसकी पिटाई होती है, फिर कहता है अब कभी नहीं करूंगा चोरी। लेकिन चौथे श्रेणी का व्यक्ति वो होता है जो चोरी करता है, पिटाई हो जाती है बारंबार, फिर भी चोरी नहीं छोड़ता, फिर चोरी करता है, फिर पिटाई होती है, फिर चोरी करता है, छोड़ता नहीं। तो ये जिन लोगों की बात यहां प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वो है इस चौथी श्रेणी के लोग। इतने जन्म से वो इस भौतिक शरीर को धारण करते आए हैं, अलग अलग भौतिक शरीर, हर एक शरीर में कितने कष्ट, कितनी यातनाओं को सहन करना पड़ा है, फिर भी छोड़ते नहीं, आशा को छोड़ते नहीं है। हम होंगे एक दिन कामयाब, वो क्या है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम सुख की प्राप्ति करेंगे, करेंगे अवश्य करेंगे, हमारे विज्ञान से, हमारे तकनीकी ज्ञान से, हमारे अर्थव्यवस्था के बल पर एक दिन हम कामयाब होंगे अवश्य। तो ऐसे लोग जिनकी दृढ़ निष्ठा भोगवाद में होती है, भौतिक मार्ग में होती है, ऐसे लोगों के लिए कभी भगवत मार्ग उपलब्ध नहीं है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहृत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य से बहुत आसक्त हैं, प्रकृष्ट रूपेण आसक्त, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, प्रसक्ता नाम मतलब उन लोगों के लिए जो इस प्रकार से आकृष्ट हैं, आसक्त हैं भोग और ऐश्वर्य से, तया अपहृत चेतसाम, उनकी बुद्धि माया हर लेती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उनकी। हालांकि ये लोग ऐसा नहीं समझते कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, जो स्थिरता चाहिए मन की और बुद्धि की आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समाधो न विधीयते, कभी भी उपलब्ध नहीं होता, कभी भी जागृत नहीं होता उनके मन में। और इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं प्रहलाद और कहते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं। अदांत गोभी, अदांत गोभी मतलब जिनकी इंद्रियां, गोभी ही, गो शब्द गाय को भी संबोधित करता है और इंद्रियों को भी, इसलिए गोविंद मतलब गौओं के, जो गौओं को प्रसन्न करने वाले हैं, आनंद देने वाले, और इंद्रियों को भी। तो अदांत गोभी ही का मतलब है कि जिनकी इंद्रियां बिल्कुल संयम में नहीं है, और ऐसा होने की वजह से वो ऐसे पाप करते हैं जिसकी वजह से उनकी गति तो केवल नरक ही है और कुछ नहीं। विषताम तमिश्रम, तमिश्रम मतलब नरक, विषताम मतलब प्रविष्ट होते हैं। और ये कार्य क्या है जो वो करते हैं, ये इंद्र तृप्ति क्या चीज है। पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, बारंबार उसी चीज का भोग करना। वैसे तो इंद्र तृप्ति हर एक योनि में एक ही है, प्रभुपाद जी बार बार समझाते हैं, जो आनंद हमें एक बड़े बड़े 5-स्टार होटल में जाके 10,000 रुपए दे के एक भोजन करने में आनंद मिलता है, वही आनंद एक सड़क पे हुआ कुत्ता जो अपने भोजन खाने में उसको मिलता है। चाहे कोई व्यक्ति एक छोटे से झोपड़ी में क्यों ना सोया हुआ हो, और कोई व्यक्ति राजमहल में सो रहा हो, जब दोनों सोते हैं तो नींद का आनंद दोनों को एक बराबर आता है, बल्कि शायद राजा को नहीं आता होगा, इतने तनाव उसके जीवन में होते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति का आनंद न केवल मनुष्य योनि में, हर पशु की योनि में भी एक ही होता है, कोई फर्क नहीं है इसमें, केवल पात्र बदल जाते हैं। इसके बारे में प्रभुपाद जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि एक बार एक व्यक्ति था और वो अच्छे मार्ग में नहीं चलता था, वो बहुत बीमार हो गया क्योंकि उसने बहुत गलत कार्य किए थे, और बहुत बीमार पड़ गया, उसके शरीर में कोई ताकत रही नहीं। उसकी पत्नी थी जो बहुत पतिव्रता थी, पति की सेवा करती रही, इतने बाद भी इतने उसके पति बीमार हो गए वगैरह, फिर भी पति की सेवा करती रही। एक बार ऐसे हुआ कि उस व्यक्ति ने कहा अपने पत्नी से कि वहां सामने एक वेश्या रहती है, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो पत्नी ने सोचा कभी क्या करेंगे, तो वो गई वहां पर और उस वेश्या की सेवा करने लगी बिना मूल्य के, और वो बर्तन धोती, घर सफाई करती। ये वेश्या को समझ भी नहीं आया कि ये औरत यहाँ क्यों आती है, और आके बिना शुल्क लिए, बिना कोई तनख्वाह लिए, केवल यहाँ मेरी सेवा करके चली जाती है। फिर एक दिन जब उन्होंने पूछा, वो वेश्या ने उससे पूछा, उसने जवाब दिया कि मेरे पति ऐसा चाहते हैं। तो ठीक है, वेश्या को बहुत करुणा की भावना आई हृदय में और सोचा कि इस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए, किस तरह से उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। तो वह कहा कि पति को बुलाओ एक दिन। और उस वेश्या ने बहुत स्वादिष्ट एक दावत सजा के रखा और उन्होंने दो प्रकार के पात्र रखे और हर एक पदार्थ को दो दोनों पात्रों में डाल दिया। जैसे दाल है तो एक सोने की कटोरी और दूसरे लोहे की कटोरी, इस प्रकार से सारे व्यंजन जितने भी बने उनको ऐसे बांट के रखा। तो फिर सबसे पहले उन्होंने उस वेश्या ने लोहे की कटोरी से प्रसाद या भोजन देना शुरू कर दिया। पहले दाल दिया, फिर सब्जी दिया दूसरे कटोरी से, और फिर कहा कि अभी मैं सोने के कटोरी से खिलाऊंगी। तो सोने के कटोरी से लाए वही चीज, उसने कहा अरे ये तो यही चीज है। फिर वेश्या ने रोका और कहा हाँ अभी तक तुम समझी नहीं, वास्तव में हम आत्मा है और ये शरीर जो है केवल एक वाहन है, एक कटोरी है, एक पात्र है। तो पात्र सोने का हो या पात्र लोहे का हो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी इतनी पतिव्रता स्त्री है और उसको छोड़कर तुम हमारे पास आए केवल शरीर के आकर्षण की वजह से, तो ये बिल्कुल योग्य नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए पात्र अलग हो भी अंदर वस्तु वही है। ये इंद्र तृप्ति करने से तुमको क्या मिलने वाला है, इंद्र तृप्ति का स्वाद पात्र बदलते हुए भी वही है। वही स्वाद तुमने पहले भी पशु योनि में लिया है, उसके पहले पक्षी योनि में लिया है, कीड़े के योनि में भी लिया है, और अब यहां मनुष्य जीवन में आकर अपने पत्नी को छोड़कर ऐसे अधर्म को स्वीकार करना चाहते हो। और उस वेश्या ने जब ऐसे प्रवचन दिया उस व्यक्ति को तो उसके होश ठिकाने आ गए और वो बहुत पश्चाताप करने लगा और फिर सही मार्ग पे आ गया। तो ये वेश्या बहुत ही विशेष व्यक्ति थी। ऐसे भी इतिहास में घटनाएं हैं जब वेश्या भी वैसे आगे चल के महान भक्त बने। तो प्रभुपाद ये कहानी इसलिए बताया करते थे कि इस बात को सिद्ध करने के लिए कि इंद्रिय तृप्ति जो है वो किसी भी योनि में उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य योनि में है, चाहे वो पशु हो पक्षी हो कुछ भी हो, वही स्वाद हर एक योनि में उपलब्ध है। तो मनुष्य जीवन में आके केवल वही चीजों को क्यों करना है हमें। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अरहते विट भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये यस्मात ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों को समझाते हैं न अयम देह, कि न ये देह जो है मनुष्य देह ये उस चीज के लिए नहीं है, उस चीज की प्राप्ति के लिए नहीं है जो विड़ भुजाम जो कचरा खाने वाले जो पशुओं के शरीर में भी उपलब्ध है, ये मनुष्य देह उसके लिए नहीं है। मनुष्य देह किसके लिए है, तपो दिव्यम दिव्य तपस्या करने के लिए। पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध येद यस्मात ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जिस तपस्या करने के फल स्वरूप हमें दिव्य स्तर का आनंद आध्यात्मिक आनंद मिलता है जो कि शाश्वत है और जो वास्तव में हमें संतुष्ट कर सकता है। तो प्रहलाद महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों से इसी बात को कहा है पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, बारंबार बारंबार उसी चीज को चबाना जो हमने पुनर पूर्व जन्मों में अलग अलग योनियों में अनुभव किया है। इंद्र तृप्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद ही उसी चीज में रमण करना ये मनुष्य के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उसी चीज का बारंबार स्वाद लेने में कोई रस नहीं रह जाता। आपने देखा होगा गन्ने का रस कैसे निकालते हैं, गन्ने को अंदर डालते हैं फिर से उसको अंदर डालते हैं, जितना हो सके उतना रस उसका निचोड़ निकाल लेते हैं, फिर बाद में कुछ रह नहीं जाता उसको फेंक देते हैं वो। उसी प्रकार से इंद्र तृप्ति कर करके कब तक करेंगे, उसी घिसी पिटे चीज को बार बार हम स्वाद लेना चाहते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसे लोग केवल उसी स्वाद के लिए जो पहले कई बार उन्होंने ले लिया है और जिसमें वास्तव में स्वाद है नहीं, वो ले रहे हैं, और इस वजह से वो उनकी मति कृष्ण मति कभी नहीं हो सकती। और फिर वो कहना चाहते हैं हिरण्यकश्यप को, हिरण्यकश्यप समझ गए, प्रहलाद ने कहा नहीं, लेकिन हिरण्यकश्यप समझ गए कि प्रहलाद कहना चाहते हैं कि हे पिता, आप भी इस श्रेणी में हैं, इसलिए आप कभी नहीं समझोगे। अगर हमें सच्चा आशीर्वाद चाहिए तो हमें यह मांगना चाहिए कि हमें कृष्णमती मिल जाए। चैतन्य महाप्रभु जब किसी से मिलते थे तो किस प्रकार का आशीर्वाद देते थे? वो ये नहीं कहते थे आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, वो कहते थे कृष्णे मति रहो, कृष्णे मति रस्तो, कि आपके अंदर कृष्ण मति हो जाए, कृष्ण के प्रति आकर्षण हो जाए। जब तक इंद्रिय तृप्ति का भूत छाया हुआ है हृदय में, तब तक कृष्ण को समझना थोड़ा मुश्किल है। रूप गोस्वामी कहते हैं ये भुक्ति और मुक्ति की कामनाएं ये चुड़ैल के समान हैं, जो व्यक्ति के हृदय पर छा गए हैं। भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत पिशाची वर्तते, कि जब तक ये पिशाची या ये चुड़ैल, भुक्ति मुक्ति नाम के चुड़ैल हमारे हृदय में है, तब तक हम भक्ति के आनंद का स्वाद नहीं ले सकेंगे। इस निम्न श्रेणी के स्वाद को लेते रहेंगे, चबाते रहेंगे, जिस चीज को पहले हम चबाते रहे हैं अनादिकाल से। तो ये प्रह्लाद महाराज का महत्वपूर्ण उपदेश है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसे कई तथाकथित विद्वान हैं, तथाकथित दार्शनिक हैं, जो भगवद गीता के ऊपर ऐसे टीका लिखते हैं जिसमें वो राम और कृष्ण को मानते हैं और ये भगवान है ये भी मानते हैं, लेकिन अंततः उनको निराकार समझते हैं। आगे चल के अपने ही मन गणित ढंग से वो कोई ना कोई गलत अर्थ निकालते हैं भगवद गीता का। और प्रभुपाद जी यहां कठोर शब्दों में कहते हैं कि ये लोग भी ऐसे ही ग्रहव्रत लोगों में से एक हैं। न वो व्यक्ति जो केवल स्थूल रूप से भोग करना चाहते हैं, पर तो वो व्यक्ति भी जो कोई गलत निष्कर्ष निकालना चाहते हैं भगवान के पवित्र ग्रंथों का, उनके मन में भी ऐसे कृष्णमति कभी उत्पन्न नहीं होगी। आगे चल के और भी सुंदर बातें बताने वाले हैं। प्रहलाद महाराज का कहने का मतलब ये है कि हे पिता, ये जान लीजिए कि आप भक्ति क्या है, भक्ति कितनी महान है, ये नहीं समझेंगे जब तक कि आप एक वैष्णव के चरण धूली अपने आप ऊपर नहीं लगाएंगे। जब तक ऐसे महात्माओं के शरण लेकर उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक भक्ति क्या चीज है आप नहीं समझ पाएंगे, आपके समझ की बाहर है। तो ठीक है, अगला वाला श्लोक लेने से ज्यादा समय जाएगा, तो यही कथा समाप्त आज के लिए करते हैं सुबह के लिए। अगर कोई आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज शाम को हम नरसिंह देव के प्राकट्य की कथा करेंगे और प्रहलाद महाराज के उपदेश कल सुबह हम फिर से करेंगे, ठीक है? तो आज शाम को, क्योंकि नरसिंह जयंती का विशेष उत्सव है, तो उसमें विशेष करके नरसिंह देव भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। प्रहलाद महाराज की चर्चा तो आएगी आएगी, परंतु ये जो विषय क्रम से चल रहा है उसको हम कल सुबह जारी करेंगे, ठीक है? तो कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, वो स्वागत करना चाहते हैं जो विशेष करके वृंदावन से आए हैं, वृंदावन से होकर शिमोगा होकर काफी भ्रमण करके यहाँ कष्ट लेकर गोकुल धाम होकर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनका स्वागत करते हैं तीन बार हरि बोल कह के। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न टीका टिप्पणी?
इज द डिफरेंस बिटवीन वेदस एंड लॉ?
वेद और भागवत में अंतर क्या है? आप में से कोई बताएंगे? सारे वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। केवल वेदों का नहीं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सबका सार है श्रीमद् भागवत। तो हमें सार ग्राही बनना है तो भागवत को ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा।
आपने बताया कि हमारे योग्यताओं को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कभी कभी भक्तों का ये संदेह होता है कि अगर हमारे जो स्किल्स है उसको सेवा में लगाएंगे तो उसके कारण शायद हमारा प्रतिष्ठा अहंकार बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम पीछे रहना चाहते हैं, नम्र बन के रहना चाहते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं?
अगर भगवान कृष्ण ने हमको कुछ दिया है, अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो अवश्य दुरुपयोग करेंगे। ये स्वाभाविक है इस दुनिया में। इसलिए भला ये है कि हम उन गुणों को, उन कलाओं को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें कृष्ण की सेवा में जहां तक हो सके। और अगर कोई मौका नहीं भी मिल रहा है इन गुणों का प्रयोग करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो कोई बात नहीं, कम से कम दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और हाँ, ये बात ठीक है, भक्त को विचार करना चाहिए कि मुझे प्रतिष्ठा के पीछे नहीं जाना चाहिए। और अगर इन गुणों का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि मुझे प्रतिष्ठा मिले, तो फिर वो कृष्ण की सेवा नहीं है, वो अपनी सेवा है। हमने क्या कहा था कि हमारे गुणों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, न कि हमारी सेवा में। अगर हमारे हृदय में ये इच्छा है कि ऐसा ऐसे गुणों का प्रदर्शन करके हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो फिर वो भावना से मुक्त होने के लिए हमें भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बजाय कि हम इस चीज का उपयोग भगवान की सेवा में न करें, करें परंतु भगवान से, वैष्णवों से प्रार्थना करें कि ये जो मिथ्या भावना है प्रतिष्ठा के लिए, वो कभी हमारे मन में नहीं आए। ठीक है, और कोई प्रश्न? कहाँ से प्रश्न है? हाँ जी
गुरु जी, के हम व्यास में देखते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए प्रयास करते हैं, और हम सोचते कि सत्ययुग में धर्म धर्म था, फिर भी सत्ययुग में इतने बड़े बड़े राक्षस थे, तो असलियत में धर्म कभी स्थापन हुआ है? भगवान ने कितना दिन इधर धर्म की स्थापना हुई है इस चार युगों में? जैसे रावण था, रावण मरने के बाद कितना दिन चला, हिरण्यकश्यप मरने के बाद कितना दिन वो धर्म की स्थापना हुई, वर्णाश्रम का काल चला सही ढंग से?
वास्तव में इस दुनिया में हर वस्तु का घटन होता है, धर्म का भी, क्योंकि ये भौतिक जगत का गुण है। हर चीज का ह्रास होता है, इसलिए भगवान को बारंबार आना पड़ता है। इसलिए तो भगवान बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो कहते हैं कि जब धर्म की ग्लानी होती है तब मैं आता हूं, क्योंकि बार बार ग्लानी होती रहती है, क्योंकि भौतिक जगत है ही ऐसा। ये ऐसा स्थान है जहां सभी लोग भगवान को भूल चुके हैं, और जब भगवान धर्म की स्थापना करते हैं तो थोड़े समय तक चलता है, उसके बाद पुनः भगवान अगले युग में प्रकट होते हैं। जब वो देखते हैं कि अभी फिर से धर्म का घटन हो गया है, फिर धर्म की स्थापना करते हैं, और फिर ये चक्र चलते रहता है। सत्ययुग में भी असुर वगैरह थे, हाँ, लेकिन आजकल की तरह इतनी बड़ी संख्या में नहीं। आजकल सुर कौन है, कहाँ मिलते हैं सुर? सब जगह तो असुरी प्रवृत्ति का प्राधान्य है। लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है असुर बनने के लिए, तो सत्ययुग वो युग है जहां ज्यादातर लोग पुण्यवान होते हैं, धार्मिक होते हैं, भक्ति में लगे हुए होते हैं। बिरला ही इधर उधर कोई मिल जाता है असुर, लेकिन वो असुर होता है ऐसे बड़ा जबरदस्त, हिरण्यकश्यप जैसा। और कोई बात, प्रश्न या? ठीक है, ठीक है। तो आज शाम को ठीक 6 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, तो कृपया आप सही समय पर आइएगा। और आज तो शायद छुट्टी है, छुट्टी है ना, तो मंदिर में सेवा कर सकते हैं आप, ज्यादा जप कर सकते हैं, और सजावट के लिए भी वगैरह और सेवा की जरूरत है तो आप इसमें मदद कर सकते हैं।